ओम शांति। कुछ एक सालों से बाबा हम सभी से एक नई सेवा चाहते हैं, और वह सेवा है चेहरे और चलन द्वारा। वाणी से तो बहुत सेवा की, लेकिन अभी भगवान की जो यह आश है, उस आश को हम कैसे पूरा करें, किस प्रकार चेहरे और चलन द्वारा सेवा करें, उसकी विधि हम सभी को समझाएंगे। आदरणीय शिलू दीदी जी, शिलू दीदी को यह टॉपिक इसलिए दिया है कि नेचुरल दीदी की चलन और चेहरा अभी भी बहुत सेवा करता है, ठीक है ना? देखते ही सेवा माना ज्ञान की हर बात को किस प्रकार व्यवहार में लाए, ये आपके प्रैक्टिकल जीवन से सीखने को मिलता है। दीदी का हम सभी बड़े प्यार से एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। आज का विषय है चेहरे और चलन द्वारा सेवा, आदरणीय शिलू दीदी जी।
ओम शांति। बाबा के बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? दुनिया में लोग आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? वहां तो भारत की ये रस्म है, आपस में मिलेंगे, राम राम कहेंगे, जय श्री कृष्ण कहेंगे, हैं हरिओम कहेंगे, है ना? बहुत रूपों से एक दो को संबोधन करते हैं और मिलते हैं। पर बाबा के बच्चे जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? ओम शांति कहने से पहले कैसे मिलते हैं? दृष्टि के द्वारा। तो पहले दृष्टि से मिलन और फिर ओम शांति से मिलन, क्योंकि दृष्टि के द्वारा आत्मा आत्मा को देखती है। आज भी बाबा ने कहा ना कि कितने अकाल तख्त हैं, कितने अकाल तख्त हैं, हाँ इतने जितने विश्व में मनुष्य है उतने अकाल तख्त हैं। तो हर एक को उनके अकाल तख्त पर देखना है। वैसे भी जब किसी मेहमान का स्वागत किया जाता है तो भारत में ये भी रस्म है, जैसे ही वो आता है उसको तिलक देते हैं, क्या करते हैं? तिलक। तो ये तिलक वास्तव में आत्मस्मृति की निशानी है। अब यहाँ सबको तो बार बार तिलक तो नहीं देंगे, आपको तिलक तो मिल गया जैसे ही आप इस हॉल में आए पहले दिन, तो आत्मस्मृति का स्थूल रूप में तिलक तो मिल गया। परंतु जब भी किसी से मिले तो पहले उन्हें उस आत्मिक दृष्टि से देखना है। आत्मा भ्रकुटी में विराजमान, अपने अकाल तख्त पर अकाल मूरत आत्मा विराजमान, और फिर मुख से ओम शांति कहते हैं। तो आत्मा को देखते ही क्या महसूस हो कि ये शांत स्वरूप आत्मा है। और फिर बाबा कई बार तीन बार कहते हैं तो और भी शांति पर छाप लग जाती है। तो यही अंतर है, दुनिया में एक दो से मिलते हैं और हम भी एक दो से मिलते हैं उसमें, क्योंकि हमारे अंदर में एक ही भावना है हर एक के प्रति, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो कि उसका कल्याण हो, कल्याण की ही भावना है। चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न हो, चाहे उसने बहुत कुछ गलत किया है, परंतु उसका भी भला हो। इसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, अपकारियों पर भी उपकार करो। तो वो कैसे होगा? जब हम अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा करेंगे। विश्व कल्याणकारी बनना है तो पहले आत्मा अपना कल्याण तो करे। और आत्मा कैसे अपना कल्याण करेगी? जब पहले आत्मिक दृष्टि होगी, आत्मिक स्थिति होगी, वैसी ही वृत्ति होगी, वैसी ही स्मृति होगी, क्योंकि इन सब का आपस में बहुत कनेक्शन है। आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति, ये चार बातों का आपस में बहुत संबंध है। और उसके बाद फिर चेहरा, चलन, क्योंकि वो तो बाह्य बातें हैं, पर जो आंतरिक बातें हैं वो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और स्थिति है। और जो दृष्टि में है, जो स्मृति में है, जो स्थिति में है, जो वृत्ति में है, वही फिर चेहरे द्वारा दिखाई देता है और चलन में आता है। वैसे भी कहते हैं कि चेहरा जो है वो मन का दर्पण है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जो कुछ आपके मन में है वो चेहरे पर दिखाई देता है। कई बार चेहरा तो बहुत मुस्कुराता है और अंदर में तो बहुत गुस्सा है, ऐसे भी होता है। अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे कहते हैं ना, असली नकली चेहरा। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर से कहेंगे आप तो बहुत अच्छे और अंदर से कहिए मर जाए तो अच्छा है, ऐसे भी है। कोई मेहमान आया, जैसे आया मुस्कुरा तो देंगे, लेकिन अंदर में आता ये क्यों आया इस समय। उस समय मुस्कुरा दिया, भले स्वागत भी किया, लेकिन अंदर में आया कि अभी देखो ना हमारा टाइम बर्बाद करने लिए आया, अब इसके लिए कितना मुझे टाइम देना पड़ेगा। और बाहर से आए बहुत अच्छा, आए आप वेलकम है, लेकिन धीरे धीरे जो अंदर होता है ना वो बाहर आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है, भले अंदर कुछ और हो, बाहर कुछ और हो, बाहर का दिखावा हो, पर अंदर कुछ और है, पर धीरे 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 बाहर आ जाता है। इसलिए वो असली नकली चेहरा अलग अलग नहीं हो सकते हैं, वो प्रकट हो ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि वॉच योर थॉट्स, अपनी सोच पर ध्यान दो, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि एक दिन वो आपके मुख पर आ जाएगा। वही बात, भले कितना भी छिपाओ, कितना भी आप उसको दबाओ, पर अगर मन में है तो एक दिन मुख पर आ जाएगा। सो वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स, वो शब्द बन जाएंगे एक दिन। इसलिए आप अगर नहीं चाहते हो वो बोलना तो वो सोचो भी नहीं। सोचने से भी पहले सोचो मैं क्या सोच रहा हूं। इसीलिए मुख पर वही बोलो, इसलिए जो बोलना है वही सोचो, और जो बोलो वो फिर करो भी। ऐसे तो नहीं, कई कहते मैं जो बोलता हूं ना वो करता कभी नहीं हूं। ऐसे कई लोग कहते मैं जो कहता हूँ ना वो कभी करता नहीं हूँ। अब ऐसे व्यक्ति पर कौन भरोसा रखेगा, ये खाली बोलता ही रहता है, करता कुछ नहीं है। ये तो बोलने दो, करेगा नहीं। तो जो केवल कहता मैं बोलता हूँ पर करता नहीं हूँ, तो उसका विश्वास, उसके प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। परंतु एक दिन जरूर करेगा, जो बोलता है ना, बोलता ही रहेगा तो करेगा। जैसे कोई सुसाइडल प्रोन होते हैं, बार बार कहेंगे मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, परंतु लोग कहेंगे ये तो करेगा नहीं है, तो ऐसे ही कहता है, थोड़ी ऐसे जाके मरेगा। पर सचमुच एक दिन इतना उसके अंदर ही अंदर हैमरिंग है, क्योंकि वही सोच है, वही बोल है, तो एक दिन कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है, ये बोल रहा है कुछ भी कर सकता है। तो जो हम करना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, तो सोचना भी नहीं है। इसीलिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर उसकी विधि बताई है कि एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। बदला नहीं लेना है, लेकिन बदल कर दिखाना है। क्योंकि बदला अगर लेने की कोशिश करेंगे, वो बात और बढ़ जाएगी। एक तो विकर्म होगा, वो तो होगा ही, पर छोटी बात इतना बड़ा रूप ले लेगी, और फिर पूछो कि भाई बात क्या थी, ये सब क्यों इतना बड़ा रूप हो गया, वो बात तो कुछ भी नहीं थी, इसने मुझे ऐसे कहा ना थोड़ा सा, तो इतना बड़ा रूप हो गया, चलो कह दिया, क्या हुआ, कहाँ लगा। लेकिन नहीं, उसको इतना बढ़ा देते हैं, और फिर पूछो तो लगेगा कि अरे तो कुछ भी नहीं था। जिसको कहावत है ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। चलो मेहनत की तो जिंदा मिले तो, परंतु वो भी मरा हुआ मिला, उसके लिए पहाड़ खोद लिया, इतना इतना समय, श्वास, संकल्प शक्ति व्यर्थ गवाई। तो बाबा कहते ये संगम युगी जीवन तुम्हारा बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है। इस एक एक जीवन का, एक एक सेकंड, एक एक क्षण, एक एक श्वास, एक एक संकल्प, जो अंदर की शक्ति है वो बहुत कीमती है, इसलिए इसको व्यर्थ मत गवाओ। तो जब ये अंदर में निश्चय होगा, दृढ़ता होगी, तब फिर हम अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा कर सकेंगे, नहीं तो असली नकली चेहरा दिखाई देगा, पता चल जाएगा। मैं एक हंसी की बात सुनाऊं, मुझे एक व्यक्ति ने कहा, बहन जी आपको जब भी हम देखते आप तो मुस्कुराती रहती हो, मुस्कुराती रहती हो। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। तो कहा लेकिन आप कभी थकते नहीं हो, थकते नहीं हो। मैंने कहा मुस्कुरा रहे तो उसमें थकना क्या होता है। तो कहा बहन जी दुनिया में तो थक जाते हैं मुस्कुरा करके, जैसे एक फोटो खींचना होता है ना, अब वो समझो टाइम लगा रहा है, फिर हम मुस्कुरा दिए फोटो निकालने के लिए, और वो टाइम ले रहा है, वो क्लिक नहीं हो रहा है या कुछ, तो जल्दी करो ना, तो थोड़ा वो चेहरा, वो मुस्कुराहट को क्या हो जाता है, एक सेकेंड में वो मुस्कुराहट बदल जाती है, क्योंकि अंदर में तो बहुत टेंशन है, पर उस समय फोटो निकालना है, तो वो टेंशन को थोड़ा दबा देते हैं और थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा, पर फोटो वो नहीं लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वापस हो जाएगा। परंतु माना वो मुस्कुराहट कब तक की थी, केवल फोटो निकालने के लिए। फिर कहेंगे इसीलिए कहना पड़ता है स्माइल प्लीज, क्योंकि कई बार उसके उस समय भी भूल जाता है, इतने भाई फोटो निकालना है, बड़े स्ट्रिक्ट जैसे खड़े है, तो कहेंगे स्माइल प्लीज, तो याद दिलाना पड़ता है कि मुस्कुराओ, नहीं तो फोटो बड़ा उदास आएगा। लेकिन एक घड़ी चलो मुस्कुरा भी दिया, फिर वही टेंशन। हम देखते हैं पॉलिटिशियंस का यही हाल है, इतने टेंस रहते हैं, इतने टेंस रहते हैं, चलो फोटो निकालना है मुस्कुरा देंगे, फिर एक सेकंड में फिर वही स्थिति। पर बाबा ने हमें कहा है कि कुछ भी हो जाए, आप अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा करो। किसने कुछ कह भी दिया मान लो, तो क्या आप उनसे लड़ने लग जाएंगे क्या, क्या समझते हो, तुमने क्या समझाए मुझे, ये वो बस चालू हो जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो अज्ञानियों का काम है। बाबा ने हम बच्चों को सहन शक्ति दी है। कैसे आएगी सहन शक्ति? जब अंदर में सोचेंगे चलो कोई हिसाब किताब, चुकतू हो गया, चेहरे पर अंतर नहीं आएगा। हिसाब किताब चुकतू हुआ, बस ये सोचते ही हम हल्के हो जाएंगे। या बाबा कई बार कहते हैं कि क्या देखो, ये सब खेल है, खेल, ड्रामा देखने जाते, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भाग रहा है, कोई मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, हम कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, हाई ये क्यों कर रहा है, फिर हम भी ऐसे करने लग जाए उसको देख करके, क्या करते हैं। साक्षी और दृष्टा, क्योंकि साक्षी और दृष्टा ये जो स्थिति है ये तब अंदर आ सकती है जब अंदर में हलचल न हो। और अंदर में हलचल कब आती है? जब प्रश्न मन में, और प्रश्न मन में आया, हलचल पैदा हुई, चेहरे का रूप रंग बदल गया, स्थिति बदल गई, चलन बदल गई। इसीलिए बाबा कहते ये क्यों 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 की क्यों हटा दो। अगर अभी क्यों 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 की क्यों लगाएंगे तो अंत में भी क्यों में ही खड़ा रहना पड़ेगा, विजयी नहीं बन सकेंगे, विजयी तो आगे निकल जाती है, नहीं तो क्यों में खड़े रहो, पता नहीं क्या मिलेगा क्या होगा। तो इसीलिए चेहरे और चलन द्वारा सेवा माना, पहले अंतर की स्थिति बहुत ऊंची चाहिए, क्योंकि वही चेहरे और चलन में आता है। ये हो ही नहीं सकता कि अंतर की स्थिति बहुत अच्छी हो और चेहरे चलन में वो ना आए, या चेहरा चलन बहुत अच्छा हो और अंतर की स्थिति अच्छी ना हो। दोनों का आपस में बड़ा संबंध है। केवल चेहरे चलन को के ऊपर ध्यान देंगे और अंतर की स्थिति पर ध्यान देंगे ही नहीं तो चेहरा चलन पर थोड़ी देर के लिए असर आएगा, फिर खत्म, क्योंकि कंट्रोल करना होगा। इसलिए बाबा हमें कहते कैसे करो चेहरे द्वारा सेवा। पहले तो कोई भी कार्य करना हो एकदम से मत करो, पहले सोचो समझो, दृष्टि दो। भोजन भी करते हो पहले दृष्टि दो, फिर बाबा को याद करो, फिर कोई कार्य करो। अधीर्य मत हो जाओ कोई भी कार्य करने। हम ये दादी जी को देखते थे, दादी जी के पास कोई जाता था, दादी जी, दादी ऐसे से, दादी ठीक है ठीक है ठीक है देखेंगे, दादी ये निर्णय अभी चाहिए निर्णय, दादी कहेंगी बताएंगे, ऐसे नहीं तुरंत निर्णय ले लिया, तुरंत ये सब कर लिया, क्योंकि उस समय वो स्थिति कैसी है। और ऐसे ही निर्णय ले लेंगे जब कोई गुस्से में हो तो कभी भी वो उस समय निर्णय कोई न ले, जब उसका गुस्सा ठंडा हो तब वो निर्णय ले, अगर गुस्सा भी आ गया तो। क्योंकि अगर उस उत्तेजित स्वरूप में है तो निर्णय कैसा होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, सही होगा, गलत होगा। इसलिए वो बताते हैं ना, कई मैनेजमेंट कोर्सेज में ये बातें बताते हैं कि एक कोई कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो उसको बहुत ऐसी इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई थी और उसमें कई बातें निकलनी थी, तो उसमें उसको गुस्सा बहुत आ सकता था, क्योंकि बहुत गलत काम कुछ हुआ उसको अंदर में तो बहुत गुस्सा था। परंतु उसने कहा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। तो क्या किया उसने, एक पूरी बोतल पानी की पहले बुला ली, मंगा ली, और जैसे ही कुछ बात होती थी तुरंत पहले वो पानी बोतल से ग्लास में डालता था, पीता था तो फिर वो नशने तो गुस्सा सकता है ना। तो सारी मीटिंग में कम से कम उसने, एक घंटे की मीटिंग थी, उसने 15 मिनट तो पानी पीने में लगाया। एक एक सिप पीता रहा, एक एक सिप, फिर एक एक, पहले बोतल से निकालेगा, एक एक सिप ही निकालता था, यानी कि पूरा बोतल भर, पूरा ग्लास। और तो किसी ने, और बहुत अच्छी हो गई मीटिंग, बहुत बढ़िया मीटिंग हो गई। इसने गुस्सा नहीं किया और उसने भी नहीं किया, तो सभी शांति से बैठे रहे, किसी के अंदर भी कोई उत्तेजना नहीं आई और बहुत अच्छे निर्णय लिए गए, बहुत सफल हुई वो मीटिंग। तो किसी ने अंत में उनसे पूछा, सर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आप इतनी ये क्या, इतने बार बार आप पानी पी रहे थे, बार बार, तो कोई वाटर थेरेपी कर रहे हैं क्या? वाटर थेरेपी? तो क्या, नहीं वाटर थेरेपी तो कोई नहीं, मतलब एक ही बार में गुड़ पी सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर एक एक सिप ही आप ले रहे थे, क्या मतलब? तो कहा कि देखो, उस समय थोड़ा सा मुझे अंदर आ रहा था, फिर मैं अपना टाइम निकालता था, टाइम निकाल करके वो थोड़ा सा एक घूंट पानी पीना है तो कम से कम थोड़ी ठंडक मिले, और फिर मैं धीरे से बोलता था। तो ये मैंने लक्ष्य रखा कि मुझे इस मीटिंग को बहुत सफल करना है, इसीलिए मैं जितना शांत रहूंगा, जितना पीसफुली करूंगा, उतना ही सब मीटिंग में भी पीसफुल होंगे। फिर मैं ही उत्तेजित हो जाऊंगा तो सारे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने संकल्प किया, तो मैं इसमें सफल हुआ। इसीलिए कहा जाता है, सोच समझ कर कुछ भी करो। और अगर ये लक्ष्य है कि कुछ भी हो जाए मुझे मुस्कुराना है, अब ये एक दूसरा लक्ष्य है, कुछ भी हो जाए मुझे मुस्कुराना है, आई हैव टू कीप ऑन स्माइलिंग कम वॉट मे। कई लोग ऐसे होते हैं ना, हमने एक किसी व्यक्ति से पूछा कि आप अगर, बहुत गुस्सा था उसमें, तो कहता है बहन जी मैं गुस्से को कैसे मिटाऊं। मैंने कहा जब गुस्सा आए ना उस समय मुस्कुरा के गुस्सा करो। कर सकते हो मुस्कुरा कर गुस्सा कर सकते हो? तो सोच में पड़ गया, मुस्कुरा कर गुस्सा कैसे होगा? फिर अच्छा, मैंने कहा अच्छा मुस्कुराहट उस समय नहीं आए, धीरे से गुस्सा कर सकते हो? तो कहा धीरे से कैसे होगा, आवाज तो बुलंद हो जाएगा जब गुस्सा करते हैं। तो धीरे से भी नहीं कर सकते हो, मुस्कुरा के भी नहीं कर सकते हो, तो फिर आप क्रोध को कैसे जीतेंगे? अगर जीतना है तो पहले सोचो मुझे मुस्कुराना है, फिर सोचो मुझे धीरे बोलना है, तो क्या होगा? खैर बाबा ने तो हमें और बहुत सुंदर रूप दिए, ये मैनेजमेंट कोर्सेज में ये सब बताते हैं। कई कहेंगे गुस्सा आए ना तो उस समय क्या करो, उल्टी गिनती चालू कर दो, 10, 9, 8, 7 उल्टी गिनती या गिनना शुरू कर दो तो आपका ध्यान गुस्से से हट जाएगा। या पोस्टपोन करो, चलो गुस्सा करना है ना तो आज नहीं करूंगा कल करूंगा, पोस्टपोन कर सकते हो? कर सकते हो, कि उसी वक्त ही आ जाएगा गुस्सा। जो यहाँ बैठे हैं वो बताए कि जिनको कभी गुस्सा नहीं आता है, हाथ उठाओ। कोई नहीं, कोई भी नहीं। हाँ ऐसे होता है क्या? एक भी नहीं। हाँ भाई जी आपको गुस्सा आता है? होता है। तो इस भट्टी से क्या करेंगे आप? हाँ कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करना है। पर अब क्रोध नहीं करना है, इसको पॉजिटिव क्या लो, शांत रहना है। और पॉजिटिव क्या लो, मुस्कुराना है। और पॉजिटिव क्या लो, सुख देना है, शांति देनी है, खुशी देनी है। अब गुस्से से थोड़ी शांति खुशी दे सकेंगे, दे सकेंगे? उसका कल्याण करना है, गुस्से से कल्याण नहीं होगा, ये तो आग में तेल डालने के बराबर हो जाएगा। इसीलिए ओम शांति का मंत्र बहुत पक्का करें, कुछ भी हो जाए ओम शांति, पर ओम शांति भी शांति से करो। कई तो गुस्से में ही ओम शांति कहते, ओम शांति। एक भाई था, उसने मेरे को कहा, बहन जी मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, क्या करूं, बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा जब भी, क्योंकि लोग मेरे से जब बात करते वो हमको अच्छा नहीं लगता है तो गुस्सा आता है, तो मैंने कहा अच्छा कोई अगर आपको नहीं बात अच्छी लगती तो पहले उनको कहो ओम शांति, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो कुछ भी हो जाए ओम शांति कहो, तो जैसे ओम शांति कहेंगे ना तो गुस्सा मिट जाएगा। तो गया घर, गया जैसे घर गया तो पत्नी ने उसको कुछ कह दिया, ओम शांति। पत्नी कही वाह बड़ा बदल गया। फिर माँ ने कुछ कहा तो ओम शांति का, लेकिन थोड़ा जोर से ओम शांति। फिर पड़ोसी ने कुछ कहा, ओम शांति। फिर और किसी ने कुछ कहा, ओम शांति। तो आंखें भी दिखा रहा है, मुख से उसका आवाज भी बढ़ता गया, पर ओम शांति जरूर कहा। लेकिन ऐसा नहीं, तो ये तो मुख द्वारा तो चलो ओम शांति कहा, पर चेहरा और चलन। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते, यही तुम्हारी सेवा का आधार है। मनसा सेवा तो बहुत ऊंची बात है भाई, इन्हों को क्या नीचे क्यों बैठे हैं? जो नीचे बैठ सकते हैं वो, हाँ अच्छा अच्छा जाना है, जाना है। अच्छा, क्योंकि पहले तो अंतर में ये नशा हो, जब नशा होता है ना तो भाषा भी बदल जाती है, व्यवहार भी बदल जाता है, सब बदल जाता है। दुनिया में तो देखो उल्टा नशा करते हैं, पीने का खाने का वो नशा है, वो नशे में तो बहुत नुकसान है, चाहे पीने के नशे हो, चाहे खाने के नशे हो, चाहे पहनने के नशे हो, तीनों का नशा होता है। एक होता है पीने का नशा, पीने कैसे भी नशा चढ़ता है ना, शराब वराब ये जो पीते हैं। खाने का भी होता है, खाते भी है ना, तंबाकू खाते हैं, ये सब खाते हैं, क्या वो क्या पराग, पान पराग है, सब नशे की चीजें हैं। वो नाम भी मुझे नहीं आता है सच पूछ। और फिर पहनने का, जो पहन लिया टिप टॉप जेंटलमैन का रूप बन गए तो बड़ा नशा रहता है, वाह वाह टाई वाई ऐसे पहन करके घूमते ना। तो इसीलिए किसी ने ठीक कहा है, क्लोथ्स मेक अ मैन अ जेंटलमैन, बट आस्क योरसेल्फ हाउ जेंटल एम आई, मैं कितना जेंटल हूँ। ऐसे वो ठाट वाट करके जेंटलमैन तो लग रहा हूँ, कोट पैंट पहन करके टाई पहन करके जाते हैं ना ऑफिस में, बड़े ठाट से जाते हैं, पर कितने जेंटल है अंदर, ये हर एक अपने आप से पूछे। तो केवल पहनावे से, केवल खाने से, केवल पीने से, जो अंतर का जो श्रेष्ठ नशा है वो नहीं आता, ये तो बाहर की बात है। तो वो श्रेष्ठ नशा कैसे आएगा? बाबा कहते हैं आपके स्वमान से, जो भगवान ने हमें इतने सारे स्वमान दिए, जैसे आज भी आपको क्या स्वमान मिला, मैं कौन हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो विश्व कल्याणकारी का कितना बड़ा स्वमान है। एक ही स्वमान याद रखो, हमारे सूरज भाई एक ही स्वमान देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत बड़ा स्वमान है ये। वैसे ही मास्टर कल्याणकारी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, बहुत बड़ा स्वमान है। इसीलिए वो यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत बड़ी कहावत दी है यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने वो लिखा रहता है वह यूनाइटेड नेशंस के बिल्डिंग्स में सब जगह उनके स्लोगन्स है। तो एक स्लोगन है एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली। एक्ट तो लोकली करेंगे ना भाई, इनसे व्यवहार करना, इनसे व्यवहार करना, इनसे मिलना, ये करना, ये लेना, ये देना है, तो लोकली होता है। पर थिंक ग्लोबली, विश्व का सोचो, क्योंकि आज की दुनिया एक सिकुड़ गई है, एक विलेज बन गई है। कहते हैं ना आज की दुनिया क्या बन गई है, एक विलेज, एक गांव। पहले जमाने में कोई अगर कहीं घटना होती थी वो कहीं महीनों के बाद, सालों के बाद कहीं पता चलती थी। एक पोस्ट कार्ड लिखते थे तो 10 दिन के बाद वो पोस्ट कार्ड मिलता था, और आजकल उसी वक्त हो जाता है। तो किसी ने कहा कि अगर पश्चिमी दुनिया में कोई एक अंगुली उठाता है तो पूर्वी दुनिया पर उसका असर पड़ सकता है। मानो यहाँ उंगली उठाई और इस दुनिया के दूसरे कोने में उसका असर पड़ सकता है। इसलिए ग्लोबल विलेज, या किसी ने और इसको छोटा कर दिया और कहा कि ग्लोबल सिटिंग रूम। एक सिटिंग रूम होता है ना, अब उस सिटिंग रूम में तो कितने बैठे रहते हैं, विजिटर्स रूम, सिटिंग रूम। अब सिटिंग रूम में जो सब बैठे हैं सब एक दो को देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब देख सकते हैं ना। दूसरे कमरे में तो पता नहीं चलेगा, एक ही सिटिंग रूम में बैठे हैं तो सब पता चल जाता है। तो इसीलिए इस दुनिया में जो कुछ भी होता है तुरंत टीवी, रेडियो, न्यूज, सीसीटीवी, आजकल तो वो भी है, सब जगह सीसीटीवी लगा दिए कि अगर कोई कहे ये मैंने नहीं किया तो लो सीसीटीवी में आपका आ गया। कुछ भी छिप नहीं सकता है, कुछ भी नहीं छिप सकता है, और ये सब टेलीवाइज हो जाता है। तो इसीलिए हर एक को बहुत सावधान रहना पड़ता है। पर बाबा हमको दूसरे रूप से कहते हैं, डरो मत, आप ट्रांसपेरेंट बन जाओ, क्या होगा, सच तो बीठो नच। अगर अंदर में सच्चे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं, और जो अंदर में सच्चा होगा वो मुस्कुराएगा। सच तो बीठो नच, सच्चा होगा नाचेगा। जिस झूठ है, छल है, कपट है, अंदर में बेईमानी है, हेरा फेरी है, बहुत कुछ उल्टा सीधा है, तो वो भी चेहरे पर दिखाई देगा, डर आ जाएगा। चाहे कितना भी कोई छिपाए वो प्रकट हो ही जाता है। आजकल ये क्या क्या टेस्ट करते रहते हैं, नार्को टेस्ट, वही ना, नार्को टेस्ट यही होता है ना कि भाई ये सच बोल रहा है, या क्या होता है नार्को टेस्ट बताइए, क्या होता है वो वही ना कि सच, वो लाइंग मशीन, वो भाई ये झूठ, हाँ, लाइंग डिटेक्टर, जो कुछ कहो, तो वो जो अंदर का है बाहर आ जाता है। तो अगर हम सचमुच अंदर के भी साफ हैं तो वही बाहर आएगा, मुस्कुराहट आएगी, चेहरा चलन सेवा करेगा। पर अंदर में साफ कैसे हो, उसके लिए बाबा कहते हैं कि योग लगाओ मेरे से, देही अभिमानी स्थिति बनाओ, हर समय देही अभिमानी स्थिति हो, हर समय अपने सच्चे स्वरूप को कभी भूलो मत। इसलिए बाबा कहते हैं तुम एक दो घंटे के योगी नहीं हो, पर एक घंटा बैठे, एक दिन बैठे की हो गए योगी, परंतु योगी जीवन है, जीवन ही योगी है। तो योगी जीवन किसको कहेंगे, जिसका अंदर बाहर साफ। तो उसको आर्टिफिशियली मुस्कुराना नहीं पड़ता है, जरूरत ही नहीं है। एक छोटा बच्चा है, देखो मुस्कुराता है, मुस्कुराता है, सो इनोसेंट, इनोसेंटली मुस्कुराता है वो। देवी देवताओं के चित्रों को देखो, तब मुस्कुराहट वाला वो चेहरे का चलो फोटो जो निकाला है, पर क्या वो टेंस रहते होंगे या खाली फोटो के समय मुस्कुरा देते होंगे? और उसके लिए फिर हमारा एक एक अंग सेवा करे, हमारे नैन भी सेवा करे, हमारे कान भी सेवा करे, हमारे हाथ भी सेवा करे। इसलिए देखो देवताओं के अंग अंग को किसे भेंट करते हैं? कमल से भेंट करते हैं। क्यों कमल से भेंट? वास्तव में सतयुग में तो कमल से भेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना, वहां तो कीचड़ है ही नहीं। कमल से भेंट होती तब है जब कहां कीचड़ है। सतयुग में तो कीचड़ है ही नहीं, कोई विकार है ही नहीं। और जब इस प्रकार से हमारी सेवा होगी, जो इस समय हमारा संसार जो कीचड़ के समान है, बिल्कुल कीचड़ है, और उसमें हम न्यारे अलिप्त रह सके, तब सच्ची सेवा होगी। और सचमुच अंत में यही सेवा काम आएगी। अभी तक तो लोग क्या कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा सुनाते हो, परंतु वो भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, फलाने भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, फलाना भी ऐसे ही बताता है जैसे आप लोग बताते हो, बहुतों के नाम लेंगे, वो भी आप भी वो भी करते आप भी करते हो, लेकिन बाबा कहते एक समय आएगा जब वो कहेंगे आप ही। समझा क्या अंतर है दोनों में? आप ही, आप भी नहीं, आप ही। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें पवित्रता का कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है, इतना ऊंचा लक्ष्य। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्माचार्य है। जो ब्रह्मा बाबा ने आचरण किया, वो ब्रह्मा का आचरण हम फॉलो कर रहे हैं। एक ब्रह्मा बाबा ने कितनी तपस्या की, यहाँ मम्मा ने की, दादियों ने की, उसके आधार पर मधुबन का वातावरण हम देख रहे हैं, इतना शक्तिशाली है, उनकी तपस्या का ये परिणाम है। तो ब्रह्मा का आचरण करने वाले, लाने वाले अपने आचरण में केवल एक दो थोड़ी होंगे, ब्रह्मा की सारी वंशावली है, ब्रह्मा मुख वंशावली है। क्योंकि इसी पवित्रता के आधार पर ही सत धर्म की स्थापना हो रही है। तो अंतर की इतनी पवित्रता हो, इतनी पवित्रता हो, वही चेहरे और चलन द्वारा प्रकट होगी, और वही हमारी परीक्षा है। एक व्यक्ति अगर उसमें नहीं है तो वो नाम बाबा के यज्ञ का बदनाम कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, भाई चावल पकाते हैं, अब सारे चावल पक गए या नहीं पके तो क्या करते? सारे चावल थोड़ी हाथ लगाते, क्या करते? बस एक ही दाना उठाते हैं, क्योंकि सब एक ही में पक रहे हैं, एक ही दाना उठाया, भाई नहीं पका है, माना अभी चावल सब पके नहीं है। फ्रूट के टोकरे में अगर एक सड़ा हुआ फ्रूट रखा है तो क्या होता है? सारे सड़ना शुरू हो जाते हैं, रंग संग का रंग लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर एक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बाबा का नाम हम रोशन करें। बाबा का नाम किसी भी हालत में बदनाम नहीं करें, खुद मिट जाएं पर बाबा को अमर बनाएं। ऐसे होता है ना, कई ऐसे कहते हैं कि हम मर जाना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, जियो और जीने दो। कहावत है जियो और जीने दो। कोई तो खुद भी मरेंगे, उसके पहले दूसरों को मार के फिर मरेंगे। मरना ही है तो मार के मरो, परंतु चलो मरना ही तो खुद मरो ना, दूसरों को क्यों मारते हो? कई ऐसे टू डो बस ठा 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 किया, फिर खुद को मार दिया। खुद को मारना है तो दूसरों को मार के क्यों मरते हो? मर जाओ ना खुद ही, ये इतना पाप क्यों करते हो? तो एक है मरना और मारना है, दूसरा है जीना और जीने देना है। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। और इनसे भी ऊंचा क्या है? इनसे भी कुछ ऊंचा है कि जियो तो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए जिया तो क्या बड़ी बात, अपने लिए ही खाया पिया सोया किया, बस अपने आप को ही, वो क्या बड़ी बात है। इसलिए कई कहते हैं मरना तो चाहता हूं लेकिन मेरा बच्चा है, मेरा फलाना, उसके लिए जीना पड़ेगा। यानी त्याग करने की कोशिश करिए, त्याग है, बच्चे के लिए मुझे जीना है, बच्चे के लिए ये करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस सोच से नहीं लेकिन बाबा के लिए जी रहे। किस लिए जी रहे? खुद के लिए जीना की भी क्या बड़ी बात है। खुद को मैं इतना स्वर्ग का मालिक बनूंगा, ये बनूंगा, ये करूंगा, ये होऊंगा, ये भी क्या जीना, ये भी ठीक है। कई कहते हैं ना आप लोगों को बड़ा लोभ है, हम लोग को कहते हो कि लोभ को मिटाओ और आप लोगों में तो बड़ा लोभ है। तो हम कहते हैं किस आधार पर आप कहते हो लोभ है? आप कहेंगे, आप कहते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व का मालिक बनना है, हाँ ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा, ये तो लोभ है, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। कई ऐसे कहते हैं। आ गई दीदी, दादी आ गई, क्या हुआ? अच्छा अच्छा तो दादी जी कहाँ? अच्छा आ गई है, अच्छा अच्छा। अभी 11:30 तो बजे, वैसे भी उठेंगे ना 10 मिनट। तो कई कहते हैं कि आप लोगों को बड़ा लोभ है, हमको तो कोई लोभ नहीं, हमको तो मोक्ष चाहिए, जो कहते हैं ना मोक्ष चाहिए। कहते आप कहते हमको स्वर्ग चाहिए, फलाना चाहिए, चाहिए, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष चाहिए। तो हम पता है क्या जवाब देते हैं? हम कहते जो कहते हमको मोक्ष चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए, उनको ज्यादा लोभ है। कैसे उनको ज्यादा लोभ? कैसे हमको मोक्ष चाहिए कहते हैं तो उनको लोभ है, क्योंकि खुद को मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, और दूसरे बेचारे उनका तो ध्यान ही नहीं है। गुरु सोचेगा कि मैं मुझे मोक्ष मिले, पर शिष्यों को तो अपने जैसा बनाता नहीं है, तो खुद को मोक्ष मिला और बेचारे शिष्य उनके। इसलिए बाबा कहते वो फॉलोअर ही कहाँ है, फॉलोअर तो तब कहलाए जब गुरु को फॉलो करे, फॉलो तो करते नहीं है। तो इसीलिए कैसे कहलाएंगे वो गुरु है अर्थात या वो शिष्य है, क्योंकि फॉलो तो करते, फॉलोअर कैसे कहलाएंगे? पर वो मोक्ष मुझे मिले, मुझे मिले, माना उनको स्वार्थ। और हम कहते हैं सबको स्वर्ग मिले जाना, हम अकेले नहीं जाएंगे। तो हम क्या हो गए? अकेले थोड़ी मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कहते आप मरे, मर गई उनके लिए दुनिया, मर गई वो स्वर्ग में चला गया, तो एक अकेला स्वर्ग में गया क्या? स्वर्ग अकेले के लिए नहीं है, स्वर्ग तो पूरी दुनिया है, वहां तो राजा ही चलती है, वहां तो बहुत कुछ है, और हम सब जाएंगे। तो हम अकेले नहीं जाएंगे, आप सबको लेकर जाएंगे। तो कौन लोभी हुआ? कौन लोभी हुआ जो समझते हैं कि हमको मोक्ष मिले? हम कहते हमको तो मोक्ष चाहिए ही नहीं, हमें तो दुनिया में आना है, बहुत काम करना है। कई ऐसे गीतांजलि जो एक किताब है ना, अरविंद कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर की, उनकी, उसने बहुत सुंदर बात कही कि मैं भगवान को यही कहता हूँ, हे भगवान मुझे बार बार जन्म दो, बार बार जन्म दो, ताकि मैं समाज की कुछ सेवा कर सकूं। मोक्ष पा लिया, खत्म हो गया, तो इस संसार का मैंने क्या उद्धार किया? कुछ भी नहीं किया, क्या सेवा की? और मुझे सेवा करने का मौका मिले, सेवा, और सेवा करने में जितना सुख मिलता है आत्मा को, या देने में जितना सुख मिलता है उतना लेने में नहीं। क्या समझते हो, देने में सुख ज्यादा या लेने में सुख ज्यादा? कोई लेने में सुख समझता है तो वो स्वार्थी है। जरूर चाहिए चाहिए, आज बाबा ने कहा ना, इच्छा है इच्छा है, पर ये चाहिए चाहिए चाहिए। इच्छा है तो अच्छा नहीं बन सकते हैं, अच्छा तब बनेंगे जब कोई इच्छा, अपने लिए इच्छा नहीं। शुद्ध इच्छा अच्छी बात है सबके लिए। ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी। ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी बताते थे कि मैं जाता था गंगा में स्नान करने, या वो जैसे नहीं जल प्रवाहित करते हैं, तो मैं उठा करके कहता था सबके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। दुनिया में जो स्वार्थी होंगे ना वो उठाएंगे, या भगवान ये मुझे देना, भगवान ये मुझे देना, ये देना, ये अपनी इच्छा वो करेंगे और अपनी इच्छा दिखाएंगे। तो बाबा के अंदर कोई इच्छा नहीं थी, लौकिक दुनिया में भी, लौकिक जीवन में, सबके कल्याण के लिए। तो ऐसी बेहद बुद्धि हमारी बनानी है। छोटे से परिवार से बेहद के परिवार में आ गए हैं, ये पूरा विश्व ही परिवार, वसुधैव कुटुंबकम। परंतु वो कब होगी सेवा, कैसे होगी सेवा? जब अंदर में ये धुन होगी, मुझे सेवा करनी है, मुझे देना है, अपना स्वार्थ नहीं। और बाबा कहते हैं जब और की सेवा है तो खुद की तो है ही है, उसमें खुद के लिए अलग समय नहीं निकालना है। पहले था भाई अलग समय खुद के लिए निकालना होता था, पहले मैं शक्तिशाली बन जाऊं फिर मैं दूसरों की सेवा करूं। अभी बाबा कहते हैं नहीं, साथ साथ, क्योंकि समय बहुत कम है, तो समय बहुत कम है तो डबल साथ साथ करना होगा ना। जैसे कई होते भाई स्टूडेंट भी है और नौकरी भी करते हैं, केवल पढ़ाई में समय दिया और कमाई भी चाहिए तो पढ़ाई भी करेंगे साथ साथ कमाई भी, केवल पढ़ाई में ही टाइम नहीं कमाई भी साथ साथ। तो पढ़ाई तो है ही है, वो स्वयं की सेवा है, पर कमाई किस में है? जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, पर उसमें चेहरा और चलन ये बहुत बड़ी सेवा करता है। वाणी से चाहे मैं कुछ भी न कहूं, पर मेरा, मेरी आंखें, मेरी नैन सेवा करे। गुलजार दादी देखो अभी ज्यादा नहीं बोलती है, नहीं बोलती है, लेकिन उनकी आंखें सेवा करती है, आंखें सेवा करती है, वह दृष्टि देती है और सब तृप्त हो जाते हैं। बड़ी दादी जी को भी हम देखते थे अंतिम दिनों में, इतनी दादी की ऊंची स्टेज, इतनी ऊंची स्टेज, क्योंकि बहुत एक्टिव थी दादी, बहुत एक्टिव थी, हर बात में दादी का इंटरेस्ट तो था ही, सेवा की लगन और इंटरेस्ट, तो दादी से पूछना ये करना। फिर लास्ट के दिनों में देखा दादी की इतनी ऊंची स्थिति, जैसे देखते हुए नहीं देख रही है, देखते हुए बाबा भी ऐसे ही साकार, बाबा मम्मा सबको देखा। तो दादी अंदर आता था, दादी से मैं ये पूछूं ये पूछूं ये पूछूं, दादी कई बातें होती थी, लेकिन जैसे दादी के सामने जाते थे लगता था कि क्या पूछे। दादी की स्थिति इतनी ऊंची, और ये जो हमारी छोटी छोटी बातें हैं वो ऊंची स्थिति के सामने तो कुछ भी नहीं है, अपने आप हो जाएगी हल, दादी से क्या पूछे, ये अपने आप हो जाएगी। तो इतनी ऊंची स्थिति के आगे झुक जाते थे, इसलिए पूछना आवाज ही नहीं निकलता था, शांत हो जाते थे। इतना बड़ा बातूनी कोई हो ना तो भी दादी के आगे एकदम शांत हो जाता। कई मिसाल है मम्मा के आगे भी, बाबा के आगे भी। तो किस आधार पर ये होता था? जब उनकी स्थिति इतनी ऊंची होती थी, कोई चू नहीं कर सकता था, आवाज ही नहीं निकाल सकता था, वो आवाज ही दब जाती थी उनकी, क्योंकि स्थिति दादी की, मम्मा बाबा की बहुत ऊंची थी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि वो सेवा हमें करनी है, और वो स्थिति हमारे चेहरे और चलन से पता चलती है कि कोई भी मेरे सामने आए वो सचमुच उसकी दृष्टि वृत्ति बदल जाए, मुझे कहना भी कुछ ना पड़े, मेरी दृष्टि ही उनकी दृष्टि बदल दे, मेरी मुस्कुराहट ही उनकी स्थिति को बदल दे, मेरा व्यवहार ही उनकी स्थिति को बदल दे। बस ये सेवा अभी करनी है, तो यहां से इस भट्ठी से ये अनुभव करके जाओ, ठीक है? हाँ, करके जाएंगे ना, और बाबा को चिट्ठी लिख के जाना, बाबा ये मैं अपनी कमी कमजोरी सब स्वाहा कर रहा हूं, मुझे बाप समान बनना है, बस यही लक्ष्य रखो, क्योंकि समय जी लिख दिया पत्र, वाह बहुत अच्छा, उसमें ये बातें सब लिखी ना, हाँ? तो इसीलिए, और सचमुच वापस जाओ तो सब महसूस करे, ये तो भट्ठी से पक्कर आया है, मधुबन की भट्ठी कोई कम बात है क्या? वहां भी करते होंगे, गाम देवी सेंटर पर भी होती रहती है, लेकिन मधुबन की भट्ठी ये तो भाग्यशाली आत्माओं की निशानी है। इसलिए जो मेरे सामने आए, चाहे कैसी भी उसकी स्थिति हो, उसको शांति का अनुभव हो, उसको खुशी का अनुभव हो। दादी जी का मिसाल देते थे, जब कोई इतना गमगीन स्थिति में आता था कोई ऐसा, और दादी से मिलते ही खुशी का पारावार नहीं, हाँ। तो कैसे आ गई खुशी? है तो सब मन की स्थिति, क्योंकि दादी की स्थिति इतनी ऊंची थी। तो आप सब, कोई तो बहुत पुराने होंगे, कोई तो नहीं होंगे, जिन्होंने दादी जी को देखा नहीं, वो हाथ उठाए। अरे इतने सारे दादी जी को देखा नहीं, मेरा तो ये सौभाग्य रहा दादी जी के अंग संग रहे, और गाम देवी तो मैं तो दादी रहते थे तो हम भी दादी के साथ थे, स्टूडेंट भी मैं गाम देवी की थी, हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ती थी मैं, रहती थी कुलाबा में, तब गाम देवी ये वो गीतांजलि कुलाबा का सेंटर नहीं था, पहले वाटरलू मेंशन था जो रीगल सिनेमा के सामने, फिर गाम देवी खुला 64 में, तब मैं स्कूल पढ़ती थी, सेकेंडरी स्कूल में थी, हिल ग्रेंज पेडर रोड पर है ना, मैं वहां पढ़ती, तब तो स्कूल का बहुत नाम था, बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट अच्छा स्कूल माना जाता था मुंबई में। उस स्कूल में जाती थी, पहले मैं सेंटर जाती थी गाम देवी, स्कूल यूनिफॉर्म में जाती थी, स्कूल मुरली सुन करके फिर स्कूल जाती थी, तो जो सब दादियां हमको बहुत प्यार करती थी, अरे शीलू तो वही है वो स्कूल ड्रेस में तुम आती थी सेंटर पर हमेशा, तो सब दादियां वहां आती थी, सब मिलती थी दादियां, हाँ आपने देखा है ना मेरे को स्कूल ड्रेस में यूनिफॉर्म में आती थी, हाँ ये साक्षी है तो मुझे ऐसे कहती है वो, सभी ये कहेंगे तुम वो स्कूल ड्रेस में आती थी, मेरा एक नियम था सवेरे पहले सेंटर जाना फिर स्कूल जाना, फिर कॉलेज में गई, जैन कॉलेज में पढ़ती थी, तो भी पहले सेंटर गामदेवी सेंटर जाती थी और फिर कॉलेज जाती थी वापस, हाँ आती थी कुलाबा से, और फिर तो फिर 69 में मैंने बीएससी किया जैन कॉलेज से, गामदेवी में ही जाती थी, कुलाबा भी जाती थी क्योंकि मेरा घर कुलाबा में, स्टैंड सिनेमा के सामने, कैंडी मोहिनी मेंशन, कैंडी कैसल है ना कुलाबा, तो मैं वही रहती थी, पर गाम देवी में मुझे बहुत अच्छा लगता था तो मैं वहां जाती थी। फिर 69 में हमने गाम देवी, मतलब पढ़ाई मैंने पूरी की, उसके बाद समर्पित हो गई, तो फिर तो मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी मुझे मुंबई में नहीं रहना है, कुलाबा में थोड़ा समय रही पढ़ाई पूरी, बीएससी किया, जैहिन कॉलेज से बीएससी किया। फिर मैंने दादी को कहा कि मुझे, क्योंकि बाबा ने मधुबन में ट्रेनिंग शुरू की, कुमारियों की ट्रेनिंग 69 के बाद, बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तब तक मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की 69 में। क्योंकि बाबा जब भी मुझे देखते थे, साकार बाबा बॉम्बे में बहुत आते थे, मम्मा भी थी तो मम्मा का भी प्यार पाया। 1960 में ज्ञान लिया मैंने, तब 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तब 12 साल की थी, 7th या 8th में। तो बाबा जब भी मुझे देखते थे तो हमेशा बाबा कहते थे, बच्ची तुम, क्योंकि इंग्लिश में होशियार थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, तो बाबा के सामने मैंने एक दिन इंग्लिश में भाषण किया जैसे छोटी बच्ची ने किया ना, तो मैं 12-13 साल की थी, तो इंग्लिश में भाषण किया बहुत भक्केदार। तो बाबा बड़े खुश हुए, साकार बाबा बॉम्बे में आए थे, तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम इंग्लिश में तो बहुत होशियार हो, बच्ची और होशियार हो जाओ तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। तो ये पहला वरदान ब्रह्मा बाबा का यही मिला था कि तुम और होशियार हो जाओ, बॉम्बे स्कूल माना पढ़ाई इंग्लिश में, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। फिर तो पढ़ती तो रही, और फिर 1967 में मैं इंटर साइंस में थी, तब 11+2+2 था पढ़ाई का, तो इंटर साइंस में थी, और मुझे घर में सब कहते थे डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा था 67 में कि बाबा घर में सब कहते डॉक्टर बनो तो मैं क्या करूं, क्योंकि उसके बाद चूज करना था इंजीनियरिंग का लाइन, माना मैथमेटिक्स लो, फिजिक्स लो या बायोलॉजी लो, मतलब मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स माना दूसरी लाइन और बायोलॉजी माना मेडिकल लाइन, तो क्या लो। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा, जवाब दिया, साकार बाबा तो हर पत्र का जवाब देते थे, बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है और बाबा चाहेंगे कि बच्ची रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करे। ये बाबा ने मुझे पत्र में लिखा, रूहानी डॉक्टर माना वो मेडिकल लाइन नहीं लो ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा, पर बाबा की आश है कि तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, माना आत्माओं की सेवा करो। बस मैंने संकल्प छोड़ दिया, मुझे मेडिकल लाइन नहीं लेनी है। परंतु घर में बंधन था थोड़ा, तो फिर मैंने बीएससी किया, मैं 2 साल, नहीं तो मेडिकल लाइन माना 7 साल, तो 2 साल, और 2 साल में बीएससी जैसे कंप्लीट किया तो माना लास्ट ईयर ही थी और बाबा अव्यक्त हो गए, और बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए। तो मैं उस समय कोलाबा सेंटर पर ज्यादा जाती थी घर से, तो बाबा ने शरीर छोड़ा सैटरडे, 18 जनवरी था, तो उस दिन रात को छोड़ा, तो उस दिन मैं शाम को तो सेंटर गई थी कोलाबा में, क्लास कराती थी, योग माना योग कराती थी, म्यूजियम समझाती थी कोलाबा सेंटर का, वो सब कर लिया। फिर उसके बाद मैं घर गई, तो सवेरे संडे का दिन था, तो जैसे मैं घर आई से सेंटर आई तो देखा तो बिल्कुल सुनसान ही, तो संडे माना बहुत भाई बहने आते हैं, तो पता चला कि बाबा अव्यक्त हो गए और सब मधुबन गए। रात को जैसे पता चला, कोई ट्रेन से गए, कोई बस से गए, कोई टैक्सी से गए, सब मधुबन आ गए। पर मेरे तो एग्जाम्स थे, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो मुझे करने थे, तो मैंने, मेरी लौकिक मौसी और माँ दोनों मधुबन गई थी, वो घाटको पर में रहते थे, कुरला में रहते थे, और मैं कुलाबा में अपनी बुआ के पास रहती थी, बचपन से बुआ के पास पली हूँ, तो मैं तो जा नहीं सकती थी, लेकिन मैं क्लासरूम में बैठी, उस समय मेडिटेशन रूम कुछ अलग से ऐसे नहीं था, तो बाबा का चित्र तो था सामने, तो जैसे मैं बाबा को कह रही, बाबा आप चले गए, बाबा आपने जो मुझे कहा था वो वायदा तो मैंने आपका पूरा किया नहीं, आपका मैं तभी तक पढ़ रही हूँ, पर आपने मुझे बहुत सुंदर वरदान दिया था कि विश्व की सेवा करनी है, अभी तक तो पढ़ाई कर रही हूँ, तो बाबा का मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ, जैसे बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बाबा ने कहा, बच्ची मैं गया नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, पर आप बाबा की आश पूरी करोगी। मैं गया नहीं हूँ, बच्चों के साथ हूँ, आप बाबा की आश पूरी करोगी। बस इतनी मुझे आदत मिली, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला बाबा चले गए, रात को शरीर छोड़ा व्यक्त हुए, तो मेरे तो पांव वो कांपने लगे, थिरकने लगे, और मुझे तो ऐसे लगा कि अभी विनाश होगा, अब भी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा चले गए माना दुनिया खत्म, ये कहीं आकाश फट करके नीचे ना जाए, ये धरती कहीं, पता नहीं क्या उस समय हुआ मुझे, और एकदम मैंने अपने आप को संभाला, बाबा आप चले गए। फिर मैं बैठ गई मेडिटेशन में और ये बाबा का मुझे अनुभव हुआ, मैं उस समय का मैं बता रही हूँ। फिर तो बहुत अच्छा रहा कि कैसे सब पता चला, अव्यक्त बाप दादा आए, सब पता चला 21 जनवरी को, और उसके बाद तो पढ़ाई तो मेरी पूरी हो गई। और बाबा ने कहा कि मधुबन में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखो, कुमारियों की ट्रेनिंग, बठिया ये सब करो, तो सबसे पहली जो कुमारियों की ट्रेनिंग थी वो उसमें मैं मधुबन में आई, उसमें आशा बहन दिल्ली की, आरती बहन इंदौर की, मतलब ये सब हम जो बहने थी, चंद्रिका बहन, ये सब हम उस कैटेगरी के, सब ने पढ़ाई पूरी की और मधुबन में ट्रेनिंग करने के लिए आए। उसके बाद सब सेंटरों पर गए, हम भी सेंटर पर गए, तो हम तो कुलाबा में ही गए। तो कुलाबा में जब गई तो मैंने कहा मुझे मुंबई नहीं रहना है, तो दादी पुष्प शांता थी कुलाबा में, और दादी जी तो मधुबन में आ गए थे तब, तो पहले तो गांधीवी में ही थी, मधुबन में आ गए थे, तो दादी जी जब बॉम्बे में आए 69 एंड में या 70 बिगिनिंग में, तो दादी जी को मैंने कहा, तो दादी जी ने कहा, मैंने कहा दादी जी इंग्लिश सेवा वहां मुझे भेजो, तो दादी ने कहा तुम बैंगलोर जाओ, बैंगलोर में इंग्लिश सेवा है। तो मैं बैंगलोर गई, फिर वहां एक साल थी 70-71, फिर बैंगलोर से मुझे, मैं वापस मधुबन आई पार्टी लेकर जैसे आते हैं, तो दादी जी ने मुझे कहा कि अभी तुम नेपाल जाओ, काठमांडू जाओ, वहां सेंटर खुल रहा था 71 में सेंटर खुला, और वहां पर बहुत उस समय हिप्पी लोग आते थे, हिप्पीज का युग था वो, और वो नेपाल में जाते थे गांजा वांजा पीने के लिए, नहीं बहुत उनको वो मिलता था, तो वहां बहुत था, तो वहां हम लोगों ने बड़ी एग्जीबिशन की थी। तो मैं 71 में काठमांडू गई नेपाल, और एक साल वहां रही और सेंटर स्थापित किया। फिर 71 में 70-71 बैंगलोर, 71-72 काठमांडू, फिर काठमांडू से वापस आई, दादी ने मुझे कहा, मधुबन आती थी और दादी मुझे कहीं और भेज देती थी, दादी कहती थी जाओ हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में सेंटर खुल रहा था। तो 72 में मैं फिर हैदराबाद आई, तब पहला सेंटर हैदराबाद में खुला, कुलदीप बहन जो वहां उसके लौकिक पिताजी को बाबा हमेशा कहते थे तुम हैदराबाद में बच्चे सेंटर खोलो, तो वहां उसने सबसे पहले सेंटर खोला। तो 72-73 मैं हैदराबाद में थी। फिर 73 के बाद जब मैं मधुबन आई तो दादी जी ने कहा कि जाओ बॉम्बे जाओ और पासपोर्ट बनवाओ, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। तो 73 एंड में मैं मधुबन से बॉम्बे आई थी अपना पासपोर्ट बनाने के लिए, और हांगकांग जाना था, हांगकांग, तो हांगकांग जाने के लिए पासपोर्ट पहले बनाना पड़ता है। तो अभी जब तक हांगकांग का पासपोर्ट बने तब तक मुलुंद में सेवा केंद्र खुल गया, तो मुलुंद में मुझे दादी जी ने भेजा कि वहां जाकर के थोड़े दिन सेवा करो। तो मैं 6 मास मुलुंद में रही। फिर फरवरी 74 में क्रॉस मैदान में बहुत बड़ी एग्जीबिशन मेला हुआ था 74 में, तो तब मैं तो पहले तो मुलुंद में थी, तो दादी जी ने मुझे कहा कि नहीं तो मुलुंद से गांधीवी आ जाओ, क्योंकि क्रॉस मैदान में मुझे शिविर करने के लिए कहा। तो मैं मुलुंद छोड़ा, वहां गांधीवी में एक और बहन थी कल्पना बहन थी, तो दादी ने उसको कहा तुम मुलुंद जाओ, क्योंकि वो गुजराती थी, तो तुम मुलुंद में जाओ और शिलू को गाम देवी भेजो। तो मैं गाम देवी में आ गई और गाम देवी में रह करके क्रॉस मैदान में हम एग्जीबिशन मिला जो था उसमें मैं शिविर कराती थी। और वेदांती बहन जो अफ्रीका में है वो कोलाबा सेंटर पर रहती थी और मैं गाम देवी में रहती थी। वहीं से दादी जानकी जी विदेश गई, गाम देवी सेंटर से ही विदेश। लंदन में जो दादी जानकी सबसे पहले गई तो बॉम्बे से ही गए। फिर उसके बाद कैसे वो राम भाई वहां निकले उस मेले से जिन्होंने अफ्रीका का निमंत्रण दिया। और रमेश भाई उषा बहन पहले अफ्रीका गए तो उन्होंने देखा कि सब ठीक है, यहाँ सेंटर स्थापित हो सकता है। तो फिर वो राम भाई ने कहा कि हमको दो हैंड्स दो, एक इंग्लिश स्पीकिंग एक गुजराती स्पीकिंग, क्योंकि अफ्रीका में तो इंग्लिश और गुजराती। तो वेदांती बहन गुजराती, वो कुलाबा में थी और मैं गामदेवी में थी। तो दादी जी ने हम दोनों को चुना और 2 अक्टूबर 1974 को गामदेवी सेंटर से हम विदेश में गए। तो इसलिए गामदेवी तो हमारा बहुत ही पुराना सेंटर है। वहां से विदेश में गए, रमेश भाई ने भेजा, सब कुछ उसने तैयारी की हमारी और हमें अफ्रीका सेवा पर भेजा। तो क्या हुआ, जब मैं पढ़ती थी, मैं कॉलेज पढ़ती थी तो गामदेवी जाती थी, तो रमेश भाई जब भी हमको मिलते थे, शिलू बहन कब तक पढ़ना है, विनाश तक पढ़ना है वो चिढ़ाते थे मुझे, कब तक पढ़ना है, विनाश तक पढ़ती रहोगी क्या, कहाँ तक पढ़ाई करनी है, बाबा की सेवा में कब लगोगी। तो मैं कहती थी जरूर पहले BSc तो पूरा कर लूँ मैं, और साकार बाबा का तो वरदान था ही। तो सचमुच 69 में BSc किया और फिर बाबा की सेवा में लग गई। पर विदेश यात्रा हमने विदेश में जाना गामदेवी से हुआ, तो मुझे तो बड़ा नाज है गामदेवी पर, क्यों नहीं। हमारी नेहा बहन कह रही ना कि कैसे विदेश की सेवा, अफ्रीका की सेवा कहाँ, गामदेवी से शुरू हुई। इसीलिए बाबा ने हमको इतना बड़ा सौभाग्य दिया है जो अभी तो मधुबन में रह के विश्व सेवा कर रहे हैं। फिर जब विदेश से आई अफ्रीका में रही एक साल, फिर मॉरिशियस में रही, वहां पर बहुत सेवा हुई अफ्रीका में। फिर मॉरिशियस में आए तो बहुत बहुत सेवा हुई। तो हम लोगों ने मॉरिशियस से ही रमेश भाई को फोन किया कि यहाँ सेंटर खोलने के लिए कह रहे हैं। तो रमेश भाई ने कहा भले खोलो सेंटर। रमेश भाई दादी जी के साथ ही थे। तो कैसे फिर मॉरिशियस में सेंटर खोला, एक साल में मॉरिशियस में रहे। फिर वहां से जब मधुबन आई 76 में, तो दादी जी ने मुझे का पूछा आप मधुबन में रहोगी, क्योंकि तब विदेश के भाई बहने बहुत आने लगे मधुबन में और यहाँ ट्रांसलेशन करने वाला कोई नहीं था। निर्वैर भाई ट्रांसलेशन करते थे, दादा आनंद किशोर हमारे बहुत पुराने भाई वो करते थे, क्योंकि इंग्लिश हैंड कोई नहीं था यहाँ। तो दादी ने मुझे कहा, मैंने कहा दादी जहाँ आप रखो मैं तो बाबा की हूँ, जहाँ सेवा में भेजो। दादी जानकी को इच्छा थी कि मैं गयाना जाऊं, साउथ अमेरिका करेबियन कंट्रीज में, वहां पर सेंटर खुल रहा था। पर बड़ी दादी जी कहे नहीं, मधुबन में शिलू बहन को रखना, शिलू को रखना। तो फिर आखिर 76 से मधुबन में हूँ। मानो ये भी मेरा भाग्य है कि मधुबन में रह करके विश्व सेवा करते हैं। तो विश्व की आत्माएं भी यहाँ आती है और हम भी जाते हैं। करीब 70 देशों में तो यात्राएं की है, क्योंकि सब 140 देशों में सेंटर्स है, पर 70 देशों में मैं गई हूँ और लगभग हर साल जाते हैं और वो इनवाइट तो करते ही हैं। तो इस साल भी हम जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, चाइना पहली बार जाएंगे। वहाँ भी बाबा की बहुत सेंटर्स हैं चाइना में। कोरिया भी जाना है और थाईलैंड जाना है। तो ईस्ट में इस बार जाएंगे, पिछले साल वेस्ट में गई थी, स्पेन इटली पुर्तगाल, उसके पहले रशिया गई थी। तो बाबा के बच्चे बुलाते हैं तो इस साल यहाँ जाना, अभी जुलाई एंड में जा रही हूँ। तो बाबा की सेवा जहाँ है, चाहे भारत हो, मधुबन हो, विश्व हो, विदेश हो, सब बाबा के बच्चों की सेवा है। तो ये नाज है हम बच्चों को। कई पूछते हैं ना कि आपके कितने भाई बहने हैं, हम कहेंगे सारा विश्व हमारा भाई बहने, कितने आपके घर है, हम कहते सारे विश्व में हमारे घर है, क्योंकि जितने सेंटर्स माना बाबा के घर सो हमारे घर, तो सारे विश्व में हमारे घर हैं, सारे विश्व में हमारे भाई बहने हैं। तो कितना नशा, हाँ ये भी एक नशा है। तो ये बेहद का नशा रख करके विश्व कल्याण करना है, यही सबका भी लक्ष्य हो तो देखो बाबा की सेवा और भी आगे बढ़ेगी। इतने सब घोड़े सेवा करने निकलेंगे तो क्यों नहीं बाबा का नाम वाला होगा। अच्छा, ओम शांति, 12 बज रहे हैं, थैंक यू, ओम शांति।
वाणी का प्रवाह तो दीदी का ऐसा है जो सुनते ही रहे, नहीं? क्लास भी बहुत अच्छा, धारणा युक्त, और बाबा मम्मा के प्रैक्टिकल अपने जीवन के अनुभव से कराया। कितनी सुंदर आज्ञाकारी जीवन यात्रा। हाँ, मैं अभी सुन रही थी तो अंदर दिल में यही चलता था कि कहां पर भी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, कहां पर भी नहीं, जैसे दादी ने बाबा ने चलाया वैसे ही आप चलते रहे। आज के क्लास से हम यही आपसे अच्छी शिक्षा लेकर के जाते हैं कि आज्ञाकारी का पाठ पक्का करके यज्ञ से जो पालना ली है उसका बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने अपने स्थान पर जाकर के देंगे ना सभी। हाँ, एक हाथ की ताली से विश्वास दिलाओ कि हम भी आपके जैसे बनेंगे। अब 3 मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं।